अष्टमी करना, रामनवमी, ये सब व्रत हैं जिनका संबंध सीधे भगवान से है, उस व्रत को करना चाहिए। और देवी देवता का व्रत इतना ज्यादा है कि क्या क्या करेंगे, बहुत कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो कुंती महारानी के चरण चिन्ह पर चलना चाहिए। वे कृष्ण को समझी हैं और कहती हैं कि वास्तव में जो मूर्धन्य लोग हैं, विशुद्ध हृदय वाले, आत्मा और अनात्मा को जानते हैं और जो मननशील हैं, भगवान की लीलाओं को समझते हैं, वही लोग कृष्ण को समझ सकते हैं ठीक से, महान लोग समझते हैं। और हम जैसी स्त्रियां भला आपको कैसे समझ सकती हैं। यह कुंती महारानी की स्वाभाविक दीनता है, यह गुण है वास्तव में। तो और अंत में जो कहती हैं कि मेरे लिए आपका ज्ञान होना अशक्य है और भक्ति होना भी अशक्य है, मुझ में न ज्ञान है न आपके चरणों में भक्ति है, इसीलिए हे प्रभु मैं तो केवल आपको प्रणाम करना जानती हूं। इतनी बड़ी स्त्री, इतना महान विदुषी, और कह रहे कि मैं तो केवल आपको प्रणाम करना जानती हूं और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, और यह कहकर के प्रणाम करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंग्रये। यही है भक्ति वास्तव में। यह बात फैक्ट है कि हम लोग भगवान कृष्ण को पूरा पूरा कभी भी नहीं समझ पाएंगे, कि समझे या न समझे, कृष्ण का नाम जपना और कृष्ण को प्रणाम करना है, यही करना चाहिए। कुंती महारानी कहती हैं मैं तो भक्ति नहीं कर रही हूं, कर सकती नहीं, यदि ये टॉप भक्ति कर रही हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं तो भक्ति करने में असमर्थ हूं, ज्ञान भी हमको नहीं हो सकता है आपका, इसलिए मैं केवल प्रणाम कर रही हूं। तो प्रणाम इस तरह से कर रही हूं, सबसे पहला प्रणाम कृष्ण नाम से कर रही हूं, हे कृष्ण मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। कृष्ण का अर्थ है परब्रह्म। कृषिर भूवाचक शब्दो रच निवृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यविधीयते। कृषि का अर्थ होता है भूमि, धरातल, और र का अर्थ है आनंद, जो आनंद के निधान है परब्रह्म, तो उनका नाम है कृष्ण। कुंती महारानी के कहने का अर्थ है कृष्ण आप जो कुछ भी हो, आपका तत्व जो कुछ भी हो, स्वरूप जो कुछ भी हो, मैं नहीं समझ पाती हूं, लेकिन आप बहुत ही आकर्षक हैं, आप आनंद के घन हैं, आपको देखकर, आपकी बात सुनकर के चित आनंद से भर जाता है, सारा दुख मिट जाता है, आप परमानंद घन हैं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। कृष्ण का एक नाम रखा हुआ है। कृष्ण नाम की व्याख्या अगर की जाए तो उसी में दो चार दिन लग जाएगा। ये कृष्ण नाम का वास्तव में कितना महात्म्य है, इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले कुंती महारानी कहते हैं कृष्णाय नमः, मैं कृष्ण को प्रणाम कर रही हूं, परब्रह्म आनंद घन प्रभु को मैं प्रणाम कर रही हूं। इनके कहने का आशय है कि मेरे जीवन में विपत्तियां रही, दुख रहा, सब रहा, लेकिन आप हमारे जीवन में रहे, इसलिए हमें कोई दुख नहीं हुआ, आज भी मैं आनंद में हूं, चूंकि आप आनंद घन हैं, आपके साथ होने से, आपका नाम जपने से, आपकी कथा सुनने से, आपको प्रणाम करने से केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। कृष्णाय वासुदेवाय नमः, फिर दूसरा प्रणाम दे रही हैं वासुदेवाय नमः। वासुदेव का अर्थ है वसुदेव के पुत्र। कुंती महारानी प्रणाम करने में कह रहे हैं कि हे हमारे भाई के पुत्र मैं आपको प्रणाम कर रही हूं, ना निकट का संबंध जोड़ रही है। हमारे भैया वसुदेव जी के पुत्र मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। कुंती महारानी के कहने का अर्थ है कि हमारे भाई वसुदेव कितनी भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि जिनके पुत्र रत्न रूप में आप प्राप्त हुए हैं, धन्य है हमारे भैया, और मैं भी धन्य हो गई ऐसा भाई पाकर के, भतीजा पाकर के। तो वसुदेव पुत्र को मैं नमस्कार कर रही हूं, इस तरह से प्रणाम किया जाता है भगवान को। भगवान को इन गुणों के साथ प्रणाम किया जाता है, नहीं कि अलख निरंजन ये सब करना बिना मतलब के। अलख निरंजन, जब कोई पूछे क्या भगवान कैसा है, ओ अलख है, कोई लख ही नहीं सकता है, लख क्यों नहीं सकता है। बांसुरी बजा रहे हैं, राधा रानी के साथ खड़े हैं, नाम है राधा गोकुलानंद, क्यों नहीं लख सकते। अभी कुछ देर के बाद पर्दा खुलेगा, लख लेंगे। और ऐसे भगवान सलख हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख लोग अल्लाह अल्लाह कह करके मंदिर में नहीं आते हैं, कुछ ध्यान का नाटक करते हैं। उनसे पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो अलख निरंजन, तो जब अलख है तो लख क्या रहे हो आंख बंद करके, इसका मतलब कि केवल मनोमीमांसा कर रहे हो, केवल कल्पना, ये सब धूर्तता है। वास्तव भगवान को आंख भर कर देखा जा सकता है, भगवान को भुजाओं में आलिंगन में लिया जा सकता है, झूला झुलाया जा सकता है, उनको खिलाया जा सकता है, उनको उखल में बांधा जा सकता है, कुछ भी, वे इतने सुलभ हैं, भगवान ऐसे हैं। इसी बात को कुंती महारानी इस वासुदेव शब्द से व्यक्त कर रही है। यद्यपि प्रभु वेदों के द्वारा नेति नेति कहे जाते हैं, जिनका स्वरूप चिन्मय है, प्रकृति से पार है, सब है, फिर भी प्रभु हमारे भैया के पुत्र बने हुए हैं, और ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रही हूं। आप परम कृपालु हैं, आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हमारे भैया ने और भाभी देवकी ने बहुत तप किया पूर्व जन्म में, और आपको पुत्र रूप में चाहते थे, इसीलिए आप उनके पुत्र बने हुए। तो दोनों को अलग अलग करे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, और हे देवकी नंदन, हे देवकी पुत्र, देवकी को आनंद देने वाले, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। इस पर ये कह रहे हैं कि हमारे भैया से भी, वसुदेव से भी अधिक भाग्यशाली हमारी भाभी देवकी है, जिसके गर्भ में आप आए। भगवान गर्भ में आए थे मां देवकी के, इसलिए देवकी को अधिक भाग्यशाली कह रहे हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति का संबंध है पिता की अपेक्षा मां से अधिक होता है। मां के उदर में बच्चा रहता है और जन्म लेता है तो मां के गोद में रहता है, मां के छाती का दूध पीता है, मां के साथ पुत्र का अधिक संबंध रहता है। वो अंश तो पिता का होता है, लेकिन उसका संबंध मां से ज्यादा होता है, और बच्चा अपने मां से ही 90% बातें सीखता है, मां ही उसका वास्तविक गुरु है। और इसीलिए हम लोग तो सुनते हैं सब जगह दुनिया में मदर टंग, मदर लैंग्वेज, फादर लैंग्वेज कभी नहीं सुनते हैं। है ना, मां जो बोलती है तो बच्चा वही सुनता है और मां की बोली को सीख जाता है। तो मदर टंग का अर्थ हुआ मां जो बोलती है वह भाषा, मदर लैंग्वेज। हम लोग देखे हैं कि मां एक भिन्न भाषा बोल रही है और पिता भिन्न, तो बच्चा मां की ही भाषा सीखता है, पिता के नहीं। पिता से तो बहुत कम भेंट होती है, तो क्या सीखेगा। तो भगवान का भी ऐसा ही संबंध था। वसुदेव जी के पुत्र हैं, नाम है वासुदेव, वासुदेव का अर्थ है वसुदेव जी का पुत्र, लेकिन मां देवकी से उनका अत्यधिक संबंध रहा। यद्यपि मां देवकी के गोद में बहुत दिन तक नहीं रहे, चले आए जशोदा के गोद में, लेकिन फिर भी मां देवकी ने उनको गर्भ में धारण किया और दूध पिलाया, इस कारण से देवकी का अहो भाग्य है। कुंती महारानी के मन में भी मातृभाव है कृष्ण के प्रति, लेकिन वे ये कह रहे हैं कि देवकी वास्तव में भाग्यवती शिरोमणि है जिसके पुत्र आप हुए, मेरा तो देवकी के समान प्रेम नहीं है। ये अपने में अभाव देख रही हैं, देवकी से कम प्रेम इनका नहीं है भगवान में, लेकिन फिर भी भक्तों का यही स्वभाव होता है, वे देखते हैं कि मैं प्रेम नहीं कर रहा हूं भगवान से, वो भक्त ज्यादा कर रहे हैं, वो तो ज्यादा कर रहे हैं, और इसका प्रमाण दे रहे हैं कि आप देवकी के पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। और उस पर भी नंद गोप कुमार आया, और हे नंद महाराज के लाडले कुमार, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। वसुदेव और देवकी से भी अधिक आनंद आपने नंद महाराज और यशोदा को दिया। जन्म लिए मथुरा में, लेकिन बाल लीला का जो सुख आपने देवकी यशोदा और नंद को दिया, वो देवकी और वसुदेव को भी नहीं दिया। नंद बाबा के कुमार कहे जाते हैं कृष्ण। यदि ब्रज में भी भगवान जन्म लिए थे, एक दूसरा रहस्य है। और माँ यशोदा, उसमें भी नंद बाबा से भी अधिक यशोदा को सुख दिया आपने, वह स्वतंत्र लीला एक दूसरे श्लोक में आएगी। कल मैं उसको कहूंगा किस तरह से माँ यशोदा ने उखल में बांधा। और जिस दिन यशोदा कृष्ण को उखल में बांध रही थी, उस दिन पृथा गोकुल गई थी। यह बात सुबोधनी में श्रीपाद वल्भाचार्य जी लिखे हैं कि जिस दिन कृष्ण को उखल में बांधा जा रहा था, वो दीपावली का दिन था और पृथा उस दिन गोकुल गई थी। चूंकि नंद महाराज से और मथुरा के लोगों से संबंध था, तो कभी कभी ये लोग जाते थे, तो पृथा गई थी और आंख से देखी थी कृष्ण को उखल में बांधते हुए और किस तरह रो रहे थे। तो उस लीला को कुंती महारानी कह रही हैं, कहां यह विश्व युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध और आप ईश्वर, लेकिन आपको जब बांधने चली थी यशोदा तो आप इतना रोने लगे थे, आप सचमुच डर गए थे। तो जो मैं दोनों लीलाओं का मिलान करती हूँ, तो मैं तो समझ नहीं पाती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं आप। यहाँ इस विश्व युद्ध के संचालक अर्जुन के सारथी बने हुए, और वहां माँ के डर से आप रो रहे थे, आंखों का काजल धुल रहा था, सिसक सिसक कर रो रहे थे। वह लीला मुझे बहुत आकृष्ट करती है, कुंती महारानी कहती। तो इस तरह भगवान का संबंध है भिन्न भिन्न प्रेमियों के साथ है, नंद महाराज के साथ, यशोदा के साथ, और गोविंदाय नमो नमः। गोविंद शब्द, गोविंद नाम इंद्र का दिया हुआ है, जब कृष्ण किशोर अवस्था में हो गए थे। तो गोविंद शब्द से तात्पर्य है कुंती महारानी का कि हे गोपियों के प्राणनाथ, मैं आपको नमस्कार कर रही हूं। यह भाव है इनका। तो वसुदेव जी के पुत्र, देवकी के पुत्र, नंद महाराज के लाडले लाल, यशोदा के पुत्र और गोपियों के प्राण वल्लभ, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। इस तरह जब भगवान को प्रणाम करना है, तो भगवान के गुणों का स्मरण करके प्रणाम करना चाहिए। नमः पंकज नाभाय। जब प्रणाम करने में पहले चरण से चालू नहीं कर रही हैं, नहीं तो भगवान ज्यादा लज्जित हो जाते हैं, इसलिए नाभि से कर रही हैं। नमः पंकज नाभाय, आपके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिससे सारा विश्व उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। आपकी आंखें कमल के समान है, मैं प्रणाम कर रही हूँ। और आप कमल की माला पहने हैं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। अंत में कहती है नमस्ते पंकजांग्रह, आपके चरणों में कमल का चिन्ह है और चरण भी कमल के समान है, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। प्रायः प्रणाम किया जाता है तो चरण में किया जाता है ना, कि नाभि में और नेत्र में ऐसे प्रणाम किया नहीं जाता है। लेकिन कुंती महारानी ये सोच रही हैं कि अगर चरण कह दूंगी तो आखिर भतीजा हैं, बहुत लज्जित हो जाएंगे, इसलिए चरण नहीं कह रही हूँ। पहले नाभि में प्रणाम, नेत्र में प्रणाम, माला पर प्रणाम, इसके बाद चरण में प्रणाम, इस तरह से कह रही। इस तरह से कुंती प्रणाम कर रही है। आगे चल करके या अपने में और भाभी में देवकी के साथ तुलना कर रही हैं कि कृष्ण सबसे अधिक के स्नेह किससे किए, अपने माँ से, अपनी बुआ से? तो कहते आपने हमसे ज्यादा स्नेह किया। यही कुंती महारानी का हृदय व्यक्त हो रहा है, हमसे आपने इतना स्नेह किया, इतना स्नेह किया कि उतना अपनी जननी देवकी से भी उतना स्नेह नहीं किया। उसके सारे पुत्र मार दिए गए कंस के द्वारा, लेकिन हमारा तो एक भी पुत्र नहीं मरा। वह कई वर्ष जेल में रही, मुझ पर तो विपत्ति आती थी लेकिन क्षण में चली जाती थी। ये गिना रही हैं, जिसको हम कल की कथा में गिनाएंगे कैसे कैसे विपत्ति आई देवकी पर और कुंती पर। क्यों आप ऐसा किए, क्यों देवकी से अधिक स्नेह मुझसे किए? क्योंकि मैं अनाथिनी थी, मेरे पति नहीं थे, मेरे नाथ आप ही हैं। देवकी के तो वसुदेव जी हैं, जादव लोग हैं, बहुत से लोग थे, लेकिन मेरे तो केवल आप ही थे। तो मेरी भक्ति से नहीं, लेकिन